तो आइए हाथ जोड़ लीजिए और मेरे पीछे दोहराइए मन को एकाग्र करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस्कान फरीदाबाद में रविवार के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ हरे राम संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी रविवार के दिन सार्वजनिक रूप से छुट्टी का दिन होने के कारण शाम को लोगों के पास कोई विशेष कार्य नहीं होता है, तो उनको एक अवसर दिया, एक मौका दिया, एक चांस दिया कि आप इस हॉलीडे को होली डे बना दो, ये छुट्टी के दिन को आप दिव्य दिन बना दो, अपने जीवन का आध्यात्मिक संग्रह करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन बना लो और आप सब आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, कृष्ण प्रसाद खाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये एक कार्यक्रम गत 40 साल से पूरे विश्व के अंदर हर जगह आयोजित हो रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मानव जन्म के लक्ष्य को भूले हुए लोगों को पुनः उसकी स्मृति दिलाना। और क्योंकि सब लोगों के पास समय केवल अवकाश रविवार को ही होता है छुट्टी का, तो उस दिन का सदुपयोग करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभुपाद जी कहा करते थे, आप लोग पैसा दे के छुट्टी के दिन क्लबों में जाके नाचते हो, बाहर होटलों के जाकर भोजन करते हो, अपना पैसा भी देते हो, आओ यहां नाचो गाओ और भोजन भी खाओ और सब निःशुल्क है। जो आपकी प्रवृत्ति है कि छुट्टी के दिन बाहर खाना है, कुछ गाना सुनने जाना है, नाच करना है, तो ये सब आपको यहां एक जगह एक छत के नीचे देते हैं। लेकिन ये सब आपका भले के लिए है, वो आपको बिगाड़ने के लिए है, ये आपका भला करने के लिए। हम आपको एक विकल्प देते हैं, एक च्वाइस देते हैं कि वहां आप अपने घर का खर्चा भी करते हो, गलत संग में भी जाते हो, नशे आदि वाले लोग भी आपको वहां मिलेंगे, नृत्य में शराब पीते हुए लोग भी मिलेंगे, तो उनके संग से बचाकर आपको भगवान के संग में बैठकर वही कार्य करना है। लेकिन भगवान के संग में करना है तो भक्ति हो जाती है, वही कार्य भगवान को निकालकर बाकी कुछ किया जाता है तो भोग और विलास हो जाता है, जो हमारे लिए कष्ट का कारण बनता है। तो इस कलयुग में अपनी पहचान और अपने लक्ष्य को भूले भटके लोगों के लिए विश्व के अंदर एक रविवार का ये विशेष, इसको कहते थे लव एंड ट्रस्ट फीस्ट, इसका नाम था प्रेम और विश्वास बढ़ाने का उत्सव। ये दिन हमारा है भगवान की प्रति प्रेम, भक्तों की प्रति प्रेम और भक्तों और भगवान के ऊपर विश्वास बढ़े, उसके लिए ये उत्सव किया जाता है। तो किस चीज का? दो चीजें, प्रेम और विश्वास। ये दो चीजें हमारे को बढ़ानी है, लव एंड ट्रस्ट फीस्ट इसका नाम ये रखा था। संसार के अंदर लोगों में विश्वास का बहुत अभाव होता जा रहा है, विश्वास कमजोर पड़ता जा रहा है। श्रद्धा और विश्वास दो शब्द हैं, तो विश्वास और प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान से, भगवान के ऊपर विश्वास होगा ना, कैसे विश्वास होगा? अरे 200 लोग आते हैं, 200 लोग के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है, भगवान के पास कमी तो है नहीं, तो विश्वास बढ़ेगा ना भाई। घर में तो मेहमान 5 आते हैं तो भी परेशानी होती है, लेकिन यहां 200 आदमी आते हैं तो भोजन खिलाने में परेशानी नहीं होती है, तो विश्वास बढ़ेगा ना। अरे भाई यहां कोई कारोबार धंधा तो कर नहीं रहे हैं, भगवान के घर में कोई कमी हो नहीं रही है, सबको मिलना है, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब हमारा विश्वास बढ़ेगा, इतने सबको भगवान दे रहा है तो हमको क्यों नहीं देगा, तो हमारा भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, भगवत गीता के 17वें अध्याय में लिखा है कि इंसान बना हुआ ही श्रद्धा का है, श्रद्धा का पुतला है इंसान। श्रद्धा मयो का अर्थ ऐसे होता है कि अब अगर कभी आपको कोई कहे कि शरबत लागे तो पीने के लिए और केवल चीनी उसमें हो, तो लोग क्या कहेंगे, ये चीनी मय शरबत बना दिया है, मतलब इसमें चीनी ही चीनी है। कभी बोला है कोई ये दाल कैसी है, बड़ा इतना नमक है, तो नमकमय दाल हो गई, तो नमकमय दाल हो गई। तो ऐसे श्रद्धामय पुरुष है ये इंसान, बना हुआ ही श्रद्धा का पुतला है। किसी न किसी के ऊपर श्रद्धा तो इस संसार में आप सबको करनी पड़ती है, छोटे बच्चों को इस बात का विश्वास है ना कि मेरे माता पिता खिलाएंगे पिलाएंगे, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे कपड़े दे रहे हैं, ये विश्वास है ना उनको। स्त्री को विवाह क्या होता है, विवाह को देखा है क्या है? एक कन्या एक वर दोनों का पंडित जी हाथ मिला के बांध देता है और ये विश्वास होता है कि आजीवन मेरी पालन पोषण करेगा, विश्वास है ना। तो ये सारा संसार विश्वास के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा? और फिर इतना सारा लाखों करोड़ों का कारोबार होता है, फोन के ऊपर विश्वास है तब हो रहा है ना। ट्रेन के अंदर रात को अपनी रिजर्वेशन की सीट के ऊपर तकिया सर के नीचे रख के सो जाते हो इस विश्वास के साथ कि हमको अपने गंतव्य स्थान के ऊपर ट्रेन पहुंचाएगी। कभी आपने जाके चेक किया है कि ड्राइवर है कि नहीं है ट्रेन में, सोया हुआ है कि जाग रहा है? आपने देखा है कभी? शराब तो नहीं पी के आया? आपने कभी चकास नहीं किया ना? क्यों? श्रद्धा है, विश्वास है, कैसे होता है। तो इस दुनिया में हर एक चीज विश्वास के ऊपर ही टिकी हुई है। वो तो दूर की बात है, हम तो कभी देखते हैं बार्बर के पास बाल बनाने जाते हैं, वो सर नीचे करने को बोलता है, सर नीचे करते हैं, उसके हाथ में चाकू होता है, वो फिर भी हमको डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास है ना। नहीं तो चाकू किसी के हाथ में हो और कहे कि सर नीचे करो तो डर लगेगा ना, लेकिन डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि श्रद्धा है। इस दुनिया में सब चीजें श्रद्धा के, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के ऊपर। जो श्रद्धा इस वक्त कम होती जा रही है संसार में, उस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ये आध्यात्मिक आंदोलन है। उस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ये आध्यात्मिक आंदोलन है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है कि एक आदमी की पूजा प्रतिष्ठा करनी है, आश्रम मठ मंदिर बनाना है, उसके लिए नहीं है। ये तो साधारण सामान्य जनता की भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास बढ़ाना है, भगवान के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करने के कार्य में उनका सहयोग करना है, इसके लिए ये संस्था है। तो रविवार के दिन ये कार्य विश्व भर में ऐसे इस दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी महाराज ने शुरू किया था। और विशेष रूप से भगवान की शिक्षाओं को सुनने से हमारा भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता है। भागवत में लिखा है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, शृण्वताम सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? स्वकथा, जो भगवान की अपनी कथा है, जो भगवान ने अपने मुख से कथा कही है, उसको सुनना चाहिए। तो भगवान ने अपने मुख से कौन सी कथा कही है? भगवद गीता। भगवान ने अपने मुख से भगवत, या स्वयं मुख पद्म नाभस्य, पद्म नाभ भगवान के मुख से निकली है। गीता कहां से निकली है? मुख पद्म नाभस्य, पद्म नाभ भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का एक नाम है पद्म नाभ, जिसकी नाभि से कमल का फूल निकलता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो नाभि को कहते हैं कमल नाभ। तो उसका मुख कैसा है? मुख कमल, उसका मुख भी कमल जैसा है। मुखारविंद सुना है? कहते हैं मुखारविंद, इसका अर्थ क्या? मुख अरविंद। तो दोनों शब्द हो जाएंगे साथ तो हो जाएगा मुखारविंद। अरविंद का अर्थ होता है कमल, अरविंद का अर्थ होता है कमल, मुख कमल, तो उसको हो गया मुखारविंद। अरविंद अक्ष, एक होता है अरविंद अक्ष, अक्ष कहते हैं आंख को, जिसकी आंख कमल जैसी हो, कमल की पखड़ी जैसी आंख हो, उसको बोलते हैं अरविंद अक्ष, मुखारविंद, मुख अरविंद, कमल जैसा मुख, तो भगवान के मुख से ये निकली है। है क्या गीता, क्या है? भगवान स्वयं कहते हैं महाभारत में, गीता मे हृदयम, गीता मेरी दिल है, गीता मेरा हृदय है। शरीर के अंदर सबसे बहुमूल्य अंग हृदय है। हृदय की धक धक से सारे शरीर को रक्त मिलता है, खून का दौरा चलता है तो सारा शरीर चलता है। तो भगवान कहते हैं गीता मेरा हृदय है, तो अपना दिल आदमी किसको देगा? इस दुनिया में आदमी दिल अपना किसको देता है? जिससे प्रेम करता है उसको देता है, और किसी को नहीं देता है। अथवा जो प्रेम करता है उसको देता है, जिससे प्रेम करता है अथवा जो प्रेम करता है उसको ही दिल दिया जाता है, हरेक को दिल नहीं दिया जाता। तो गीता भगवान ने अर्जुन को दी क्योंकि भगवान से अर्जुन प्रेम करते थे। अपने मुख से भगवान ने अर्जुन को कहा है, भूय एव महाबाहो शृणो मे परमं वचः। भूय एव महाबाहो, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, मेरे परम वचन एक बार फिर सुन लो। अभी सुनाया है, फिर एक बार सुनाता हूं। तुम अर्जुन के भाई फिर क्यों सुनाते हैं? सुना दिया ना, हो गया, दोबारा क्यों सुना रहे? भगवान कहते हैं प्रिया माणाय, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, आपका बच्चा बहुत, जिससे आप प्रेम करते हो ना, स्कूल जाता है तो उसको कितनी बार कहते हो ठीक तरह से अंदर बैठना, चढ़ के बस में बाहर मत देखना, ध्यान रखना। क्या कहा? सुना नहीं? जाते हुए ध्यान रखना, एक ही बात कितनी बार कहते हो अपने बच्चे को? जिससे प्रेम करते हैं उसको आप एक बार दस बार समझाने का प्रयास करते हो, करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? भगवान कहते हैं क्यों करता हूं मैं प्रेम अर्जुन तुमसे? तव हित कामया, तुम्हारे हित की मेरी कामना है। भगवान कहते हैं मैं आपका हित चाहता हूं, मैं आपका भला चाहता हूं, आप मुझे बहुत प्रिय हैं, इसलिए मेरे वचनों को, मेरे परम वचनों को एक बार पुनः सुन लो। तो भगवान अर्जुन से, अपने भक्त से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम के कारण हृदय रूपी गीता छलक के भगवान के मुख से बाहर आ गई। प्रेम के कारण मद अनुग्रहाय परमम गोयम अध्यात्मम, अर्जुन कहता है ग्यारहवें अध्याय में, अर्जुन और फ्रेम कहता है मद अनुग्रह, मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा की, बहुत मुझे आपने, अनुग्रह का मतलब आपने मुझे अपना छोटा समझकर अपनी गोद में उठा लिया। अनुग्रह करने का मतलब ग्रहण करना, किसी को छोटा समझ के उसको अपना लेना, उसको अनुग्रह कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे को मां उठा के गोद में बिठा दे, ये अनुग्रह हो गया। तो अनुग्रह का अर्थ है छोटा समझ के प्रेम से आपने मुझे अपनी गोद में बिठा दिया, ऐसा इसका भाव लेना चाहिए। मद अनुग्रह या परमम गोयम अध्यात्मम, अरे आपने तो बहुत गुप्त से गुप्त बातें कह दी। गुप्त बात का मतलब जो हृदय में छुपी हुई बात है वो आपने मुझे बता दी। अध्यात्मम, और ये तो संसार की बात नहीं बताई आपने, अध्यात्मा अधियात्म, अध्यात्म का मतलब जो हमारी अपनी पहचान है, जो हमारी असली जो हमारा स्वरूप है उसके बारे में आपने हमको बता दिया। तो आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है हमारे ऊपर, ये अर्जुन मानता है कि आपने कृपा करके ये प्रेम के वचन मुझे कहे हैं, मुझे बहुत, दसवें अध्याय में अर्जुन कहता है मुझे मैं आपसे प्रेम करता हूं, और ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन कहता है आपने बहुत कृपा करके मुझे ये बताया। वो पहला श्लोक है और ये भी पहला श्लोक है, वो दसवें का पहला है, ये ग्यारहवें का पहला है। तो एक बात ये समझ में आती है कि गीता भगवान का हृदय है, और वो हृदय जिसके ऊपर भगवान अनुग्रह करते हैं, जिसको भगवान अपनाना चाहते हैं, और जो भगवान से अनन्य भाव से प्रेम करता है उसके ऊपर प्रकाशित होती है। पुस्तक किताब लेके घर में रखो, उठा के साथ घूमते रहो, तब तक वो प्रकाशित नहीं होगी, अपना रूप नहीं दिखाएगी, जब तक आपके हृदय में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। श्रद्धा और प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होएगा तब भगवान के वचन खुल के प्रकाशित होके हमारे सामने प्रकट होंगे। तो ये रविवार का कार्यक्रम हमारी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम को बढ़ाने के लिए है श्री कृष्ण की प्रति, ताकि ये भगवान की शिक्षाएं जिनके ऊपर आधारित ये आंदोलन है हरे कृष्ण हरे राम, ये आंदोलन भगवत गीता के ऊपर आधारित है, और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है। शुण्वताम श्रद्धा क्या, शुण्वताम स्वकथा कृष्ण, ये भागवत में पहले स्कंद में है, श्री भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई, स्वयं उनके द्वारा कही गई कथा को सुनना चाहिए। शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यही पुण्य है। संसार में कोई पुण्य का कारण है, किसी को अगर पुण्य मानते हो, पुण्य का मतलब है जो आपको ऊपर उठाए, संसार से ऊपर उठाए, भगवान के निकट ले जाए, उसको पुण्य बोलते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, ये सुनना पुण्य है और इसका गाना भी पुण्य है, ये कथा करना भी पुण्य भाव है और कथा सुनना भी पुण्य है। और भागवत के दसम स्कंद में सुखदेव महाराज कहते हैं, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न, जो प्रश्न करता है, पृष्टतम वक्तारम श्रोत्रम पुनाति त्रयम्, भगवान के विषय में प्रश्न पूछने वाला, उसका उत्तर देने वाला, कथा करने वाला, वक्ता और बाकी सुनने वाले, इन तीनों को पवित्र करता है। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान के विषय में कथा तीन को पवित्र करती है, किसको? प्रक्षतम जो पूछता है, वक्तारम जो बोलता है, श्रोत्रम जो सुनता है, यथा सलीलम जैसे गंगा करती है, तीन को पवित्र, जैसे गंगा स्नान करने वाले को पवित्र करती है, दर्शन करने वाले को पवित्र कर देती है, आचमन करने वाले को भी पवित्र कर देती है, जैसे गंगा पवित्र करती है ऐसे भगवान की कथा भी, गंगा तो जब गंगा के पास जाएंगे तब पवित्र होंगे, लेकिन कथा तो आपके घर में भी आप करके सुन सकते हैं। तो ये गंगा रूपी गीता की कथा है, गीता गंगोत्कम पित्वा, ये लिखा है गीता गंगोत्कम पित्वा, गंग उदक, उदक कहते हैं पानी को, गीता को सुनना गीता के गंगा जल को पीना है। पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म मरण नहीं होता है, जो गीता का अमृत पी लेता है, गंगा जल पी लेता है, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो पुण्य क्या है? पुण्य है श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। फायदा क्या है, लाभ क्या होगा इसका? हृदय अंत स्थानी, भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं ना, जब हम उनके बारे में कथा सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा है कभी आपके जीवन में कोई व्यक्ति, आप देखे नहीं उसको, और दो आदमी आपकी कथा कर रहे हो, आपकी बात कर रहे हो, और आपके विषय में कुछ अच्छा बोलते हो, तो आपको कैसा लगता है उस वक्त? कोई व्यक्ति आपके लिए पूछे, ये आदमी इतना अच्छा है, सुबह सवेरे हम देखते हैं मंदिर में जाता है, ये आदमी भगवान का नाम जपता रहता है, इस आदमी ने भले का काम करता रहता है, वो आदमी अगर सुन ले कहीं तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? इस दुनिया में सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो ये हमारे अंदर ये भावना आई कहां से? हमको हमारा कोई गुणगान करता है तो अच्छा लगता है, ये हमारे अंदर आया कहां से? कहां से आया? अगर जिसने हमको पैदा किया है उसमें नहीं होता तो हम में कहां से आता? उसमें है तब में आया ना, जिसने पैदा किया है उसमें ये गुण है तब ये हम में आया है। तो जैसे हमको ये अच्छा लगता है ऐसे भगवान को भी जब उसकी कथा सुनी जाती है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। कहां बैठा है भगवान? हृदय अंतः स्थानी, वो हृदय के अंदर बैठा है। जैसे ही पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का दूसरा या तीसरा श्लोक है, तत्क्षणात उसी वक्त अवरोध्यते, भगवान रुक जाते हैं। जैसे ही आपने घर से ये संकल्प किया कि हम कृष्ण कथा सुनने जा रहे हैं मंदिर में, तो भगवान बड़े सावधान होकर रुक जाते हो, मेरी प्रशंसा सुनने जा रहा है, आप ठीक है सावधान होकर सुनूंगा। तो भगवान, अब ये बात तो आपको अच्छी लग रही है ना कि हमारी अच्छी कोई हमारी गुणगान करता है हमको अच्छा लगता है, भगवान का गुणगान करता है तो भगवान को भी अच्छा लगता है, बहुत साधारण है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में, हर बाप समझता है कि बेटा मेरी आज्ञा माने, ये सत्य है कि नहीं? हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी मेरा ही कहना माने, मुझसे ही प्रेम करे, मेरी सेवा करे, ये सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? सत्य है झूठ है? ओ, हर पति चाहता है मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करे, मेरी सेवा करे, ये सत्य है कि नहीं? फिर भगवान अगर कहता है मुझसे प्रेम करो और मेरी सेवा करो तो इसमें कौन सी गलत बात कह रहा है? जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मद याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कारो, मुझे नमस्कार करो, तो कौन सा गलत कह रहा है? जब आप अपने घर के अंदर पिता कहता है कि सब मेरी बात मानो, पति कहता है कि मुझसे प्रेम करो, तो भगवान जो पिता भी है और पति भी है जगत का, वो अगर ये कहता है तो फिर हमको ऐतराज क्यों? फिर हमको क्यों ऐतराज होना चाहिए जब हम ही ये चाहते हैं दुनिया से, हमारी यही अपेक्षा संसार के प्रति है, तो भगवान ये मांगता है तो हमको उसमें काय के लिए ऐतराज करना चाहिए? कृष्ण ऐसे क्यों कह रहा है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो अपने घर में? तुम भी तो यही चाहते हो अपने घर में। जब तुम अपने घर में, कारखाने का मालिक चाहता है कारखाने के सारे काम करने वाले मेरी आ गया मेरे यही करें, तब चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये दुनिया का बनाने वाला अगर ये कहता है तो हमको ऐतराज क्यों है उसके ऊपर? ये प्राकृतिक है। तो भगवान की कथा सुनने से भगवान को बहुत आनंद आता है। तब भगवान करते क्या है? भगवान प्रसन्न होने से क्या करते हैं? हृदय अंत स्थानी, जो अंदर हृदय में बेटा क्या करेगा? श्रुणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदय अंत स्थानी अभद्राणी धुनोति स्वहृद सताम। हरे कृष्ण, क्या करेगा? अभद्राणी, भद्र कहते हैं अच्छे आदमी, कहते हैं भद्र पुरुष है, अच्छे काम को कहते हैं भद्र कार्य कर रहा है। अभद्र का मतलब सब बुराइयां, अशुभ। कहां अशुभ? ये सब कहां होता है? हृदय के अंदर। कचरा कहां भरा हुआ है? दिल में। हृदय अंत स्थान, भगवान हृदय में बैठा है, उसकी जब कथा सुनते हैं, हम सुनते हैं तो भगवान आनंद में प्रफुल्लित हो जाता है और क्या करता है? हृदय के अंदर जो भी अभद्र है, जो भी अशुभ है, जो भी कचरा पड़ा है, धुनोती, उसको बैठ के धोता है। क्यों धोता है? बोला सुहृद। सुहृद का मतलब है शुभ चिंतक, भला चाहने वाला। वापस में कुछ भी नहीं चाहे, केवल आपको सुखी देखना चाहे, उसको सुहृद कहते हैं। मित्र उसको कहते हैं तुम मेरे काम आओ मैं तेरे काम आऊंगा। संबंधी उसको कहते हैं तू मेरे घर आएगा मैं तेरे घर आऊंगा। लेकिन सुहृद कहते हैं जो तुम्हें सुखी देखना चाहे लेकिन वापसी में कुछ भी नहीं चाहे। सुहृद कौन है संसार के अंदर? छोटा सा सुहृद का नमूना मां है जो बच्चे को धो के साफ करती है, क्योंकि सुहृद है बच्चे की, इसलिए बच्चे का मैल सारा साफ करती है और बच्चे को मल मूत्र से धो के साफ करने में कभी किसी मां को नाक के ऊपर कपड़ा रख के छोटे बालक को साफ करते हुए नहीं देखा होगा। उसको उसमें बड़ा सुख मिलता है क्योंकि उसको सुखी देखना ही उसमें आनंद उसको आता है। इसको सुहृद बोलते हैं। भगवान क्यों धोता है? क्योंकि वो हमारा सुहृद है। जैसे मां अपने बच्चे को मलमूत्र गंध से साफ करती है, ऐसे भगवान अपने, सताम का मतलब है भक्त, भगवान अपने प्रेमी श्रद्धालु भक्तों को जब वो कथा सुनने में रुचि लेते हैं और कथा का पुण्य उनके जीवन में इकट्ठा होता है तो हृदय में बैठा हुआ भगवान बड़ा आनंद में प्रसन्न होके उनके हृदय के सारे अभद्र, सारे अशुभ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि जो बुराइयां हैं उसको धोने लगता है, क्योंकि वो सुहृद है और धो के साफ कर देता है। और जब वो धो के साफ करेगा तब हमारा जो असली, जो सच्चा पच्चा, जो हमारा जो स्वरूप है, स्व मतलब अपना रूप, मतलब पहचान, जो हमारी असली पहचान है उसका हमको तब पता लगेगा जब हमारे ऊपर से ये कचरा सब साफ हो जाएगा। आपने देखा है कभी बहुरूपी आते हैं, बहुत सर ऊपर से ड्रेस दूसरा होता है तो हम पहचानते नहीं है। कभी कभी हमारे बच्चे ड्रामा करने जाते हैं, उधर कुछ ऐसा मेकअप होता है कि हम अपने बच्चों को भी नहीं पहचान सकते। तो जब तक वो सब मेकअप उतरेगा नहीं तब तक उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो कई जन्मों से हमने बहुत सारे मेकअप किए हुए हैं, वो मेकअप जब तक उतरेंगे नहीं तब तक हमको अपनी असली पहचान नहीं हो पाएगी। लेकिन जब भगवान हृदय को धो के साफ कर देता है तो फिर हमारे को अपने स्वरूप का पता लगता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। जीवेरा स्वरूप है, जो जीव है, जीव आत्मा है, उसकी असली पहचान ये है कृष्णेरा नित्य दास, वो भगवान का नित्य सेवक है, भगवान उसका मालिक है, वो उसका सेवक है। तो ये पता तब लगता है जब हृदय को भगवान अंदर से साफ करते हैं। वो ये कथा, ये कीर्तन, इनका उद्देश्य पहला है चेतो दर्पण मार्जनम। चेतना महाप्रभु की शिक्षा का पहला श्लोक है चित्त रूपी दर्पण। दर्पण कहते हैं किसको? दर्पण किसको कहते हैं? शीशे को। इसको दर्पण क्यों कहते हैं? देखा जा सकता है। दर्प एक शब्द है संस्कृत में। दर्प का मतलब पता है क्या अर्थ क्या है? दर्प, दंभ, दर्प। दर्प का मतलब क्या है? हाँ, आकर दिखाना, अहंकार करना। ये शीशा ऐसा है, अपना मुंह देखने से मैं बहुत अच्छा हूं, कोई बात नहीं, नाक थोड़ा ठीक नहीं, आंख तो अच्छी है ना, रंग ठीक नहीं तो क्या हुआ। तो अपने दर्प करना, अहंकार करना अपने ऊपर, इसलिए इसका नाम दर्पण है कि आपको इसके अंदर चेहरा देखने से अहंकार हो जाता है। औरंगजेब की बहन थी, कोई बहुत विलायत से लाया हुआ उसको एक दर्पण दिया गया था, किसी सेवक से टूट गया तो डर गया कि दंड दे के मार न दे, लेकिन वो कैसे भगवान की भक्त थी, उसने सुना दर्पण टूट गया तो बड़ी खुश हो गई, बोला आज एक अहंकार का सामान टूट गया, मुझे कोई इसके दुख नहीं है इसके कारण। ये उसकी जीवनी में ऐसे एक मिलता है दृश्य, छोटा सा दृष्टांत, कि जिस सेवक के द्वारा टूटा गया था वो तो डर रही थी कि अभी तो बाहर का फॉरेन का स्पेशल गिफ्ट लाया हुआ शीशा टूट गया तो अब हमारा क्या होगा जीवन का, लेकिन उसने देखा कि शीशा टूट गया तो अच्छा हुआ, एक अभिमान का सामान टूट गया हमारा, तो कम हमारा अभिमान कुछ कम होगा। तो ये इसको दर्पण कहते हैं, ये हृदय हमारा दर्पण है, चेतो दर्पण, ये चित्त रूपी हृदय हमारा दर्पण है। इसके ऊपर अनादि काल से कई जन्मों से मैल जम गया है, कर्मों की बहुत सी इसके ऊपर लेप आ गए हैं। आपके घर में शीशा लगा हो और एक दो महीना घर बंद रहे तो शीशे के ऊपर दज मिट्टी लग जाती है ना, तो अपना चेहरा नहीं दिखता है, तो क्या करते हैं आप लोग, झाड़ के साफ कर देते हैं। कभी तो ऐसे होता है कि शीशा लगा रहता है ऊपर से रंग किया जाए घर में, तो शीशे के ऊपर रंग लग जाएगा तो फिर झाड़ने से नहीं उतरता है, फिर पोंछना पड़ता है, फिर शीशे को पोंछते हैं ना, और रंग भी कोई डिस्टम्बर जैसा पक्का हो तो फिर तो पानी के पोंछे से नहीं उतरेगा, फिर मिट्टी के तेल से उतारना पड़ेगा शीशा साफ करना है, और कहीं डामर लग जाए तो घिसने से भी नहीं उतरेगा, घिसोगे तो दोनों आर पार एक जैसा हो जाएगा शीशा। ऐसे संसार के अंदर लोगों के हृदय कुछ तो ऐसे हैं जिसके ऊपर केवल हल्की मिट्टी लगी हुई है, थोड़ा सा कथा कीर्तन का ऐसे पंखा झेलते हैं तो मिट्टी उतरती है, तो उसको कथा में भी अच्छा लगने लगता है, भगवान का नाम भी अच्छा लगता है। वो एक मानो एक दो बार आए तो उसका मन आने का करेगा, क्योंकि थोड़ी मिट्टी कम थी, एक दो बार झाड़ने से कुछ हल्का हो गया। कुछ दो चार महीना आते हैं बहुत पोचा रगड़ना पड़ता है, क्या करेंगे, जाके बोलते हैं तो चलते हैं, थोड़ी देर में चलेंगे, प्रसाद के समय चलेंगे, अभी क्या रखा है उधर, प्रसाद के समय चलेंगे उसमें क्या, प्रसाद के समय चलेंगे उसमें क्या, इसका अर्थ ये है कि पोचा काम कर रहा है कि प्रसाद की याद तो आ रही है, लेकिन कथा साफ, कथा जितना साफ नहीं कर रहा है अभी तक, रंग थोड़ा पक्का है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहने के बाद भी न आने को तैयार है न सुनने को तैयार है, उनके तो मिट्टी का तेल चाहिए, मिट्टी का तेल चाहिए मतलब उनके घर में जाके कभी प्रसाद दे के आ जाओ कि कृपा करके ये प्रसाद खा लो, तो एक आधा दिन खाएगा तो उसके पास घर जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग डामर लगा हुआ है, कुछ भी करो कुछ होने वाला नहीं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार जन्म भव महा दावागनि निर्वापणम। भव कहते हैं संसार को, भव मतलब जहां जन्म मृत्यु होता है उसको कहते हैं भव, इसको कहते हैं भव सागर, और इसको चलाने के लिए जो देवी भगवान ने स्थापित की है उसका नाम है भवानी। भवानी का मतलब भव की को चलाने वाली, भवानी, तो भवानी दुर्गा का नाम है जो इस संसार रूपी दुर्ग की अधिष्ठात्री देवती देवी है भव की, ये भव की मालिक वो है भवानी। कई बार इस संसार में आने जाने के कारण कई संस्कार रूपी निशान हमारे शीशे के ऊपर लगे हुए हैं हृदय के। जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, अगर भगवान हमारे हृदय में है और हमारा हृदय अगर शीशा है दर्पण है तो फिर भगवान का दर्शन होना चाहिए ना, शीशे के सामने कोई चीज हो तो दिखनी चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो भगवान की बात तो झूठी नहीं है कि मैं हृदय में हूं, तो खराबी शीशे में है, क्योंकि शीशा अभी साफ नहीं है। तो ये कथा और कीर्तन और प्रसाद, ये तीनों चीजें शीशे को साफ करने के लिए है। कौन से शीशे को? अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण शब्द सुना है ना? करण का अर्थ होता है इंद्री। हाथ को कहते हैं बाहर करण, इसका नाम ही कर है, पता है ना? कार सेवा बोलते हैं, करतल धोनी, करतल ये कल की हाथ की तली से धोनी करना, इसका नाम कर है ही कर। करण, कर का मतलब इंद्रियां, ये है बाहर की इंद्रियां, आंख बाहर की इंद्री, कान बाहर की इंद्री। अंतःकरण अंदर की इंद्रियां, बाहर की इंद्रियां तो रोज हम साफ करते हैं ना, हाथ मुंह रोज धोते हैं, आंख साफ करते हैं, कान साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं, ये तो सारी इंद्रियां रोज हम साफ करते हैं ना नेम से। अंतःकरण अंदर की इंद्रियों को साफ करने के लिए साधन नहीं है हमारे पास। पेस्ट और ब्रश दांत साफ करने मांजने के लिए तो है, वो कान के लिए रुई ऐसे डाल के है, आंख साफ कर लेते हैं, साबुन से हाथ साफ कर लेते हैं, सब साधन है, लेकिन अंदर को कैसे साफ करेंगे उसके लिए कोई साधन है हमारे पास? मन पवित्र हरि नाम लिए, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चार चीजें, प्रायः तीन चीजें बोलते हैं लेकिन चित्त भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो मन और चित्त दोनों एक ही चीज के दो विभाग हैं, इनको बोलते हैं अंतःकरण, ये अंदर की इंद्रियां हैं, इसको साफ करने का साधन है मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। जैसे घर में रोज झाड़ू लगाने की जरूरत होती है क्योंकि घर साफ रखना है, ऐसे मंदिर, मन का मंदिर जो अंदर है उसको साफ करने के लिए रोज गोविंद के गुण गाया कर, भारी के गुण गाया कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये साधन है अंतर अंतःकरण को साफ करने का। लेकिन अब एक यहां प्रश्न उठता है कि साफ करेगा कौन? हम करेंगे साफ, स्वयं करेंगे, या साफ भगवान करेगा? ये प्रश्न है। हमारे साफ करने से साफ नहीं होगा, हम अपने आप साफ नहीं कर सकते हैं, जैसे बच्चा अपने आप को साफ नहीं कर सकता है, मां साफ करती, ऐसे हमारे को अंतःकरण को साफ करने के लिए भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। भगवान, अभी एक श्लोक में आपने हमने पढ़ा, धुनोति भगवान धोता है, अभद्राणी सब अशुभ, सब ताप पाप कर्म को भगवान धोता है। भगवद गीता का बहुत प्रमुख श्लोक कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यजामेकं शरणं व्रज, सारे धर्म छोड़ के मेरे शरण में आओ। ये धर्म कौन से है इसके ऊपर आज चर्चा नहीं करते हैं, ये स्वधर्म है। जो भी संसार के जाति धर्म है, कुल धर्म है, इन धर्मों के तुम छोड़ के मेरे शरण में आओ तो पाप लगेगा। अर्जुन कहता है फिर तो पाप लगेगा, मैं अपना जो काम है वो छोड़ के आऊंगा तो मेरे को पाप लगेगा। तो भगवान कहते अहम तुम सर्व पापे भ्यो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पापों से मुक्त कौन करेगा? भगवान करेगा, हम नहीं कर सकते अपने आप को। यहां समझना चाहिए कि हम इस संसार में अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते हैं। हमें जैसे जैसे बीमार है तो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता है, डॉक्टर के पास जाएगा तभी ठीक होगा, ये साधन है, ये सिद्धांत है। कोई भी बच्चा घर में अपने आप से पढ़ नहीं सकता है, जब जब गुरुजी के पास जाएगा तब पढ़ेगा, ये विधान बने हुए हैं। पढ़ना है तो गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, रोगी है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे भव रोग से मुक्त होना है तो भगवान की कथा और कीर्तन में जाना पड़ेगा। भव रोग औषधि, भव रोग की औषधि है कौन सी? निवृत तृषय उपगीय मानाय भव औषधि मनोविराम। भव औषधि भव रोग की दवाई है, श्रोत वो दवाई खाई नहीं जाती, पी नहीं जाती, कान के द्वारा ली जाती है, श्रोत सुनने के द्वारा ली जाती है। बोला किससे सुने, कौन से डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए? निवर्त तृषई, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसकी सारी तृष्णाएं भोग की वासनाएं समाप्त हो चुकी है। उपगीय मानाय, बड़े ऊंचे सुर में भगवान के गुण गाता है, भगवान के पास बैठकर भगवान को देखते हुए भगवान के बारे में बोलता है। उत्तम श्लोक गुणानुवादान, क्या दवाई है? बोला उत्तम श्लोक गुणानुवादान। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, भगवान का एक नाम वेद में है उत्तम श्लोक, जिसकी स्तुति उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा की जाए उसको बोलते हैं उत्तम श्लोक। तो भगवान को उत्तम श्लोक बोलते हैं। गुणानुवादान, उनके गुणों का वर्णन जैसे पहले महात्मा लोग करके गए हैं उनका अनुकरण करना है, अपना नया कुछ बनाना नहीं है। जो पहले परंपरागत शिक्षा आचार्य गुरुजन देके गए हैं उन्हों के द्वारा भगवान के गुण गाना, यही दवाई है भव रोग की। लेकिन सुनना किससे चाहिए, डॉक्टर कौन सा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से देखो, खांसी जुकाम बुखार हो तो किसी भी डॉक्टर का कोई भी बैठा होगा उसे एक गोली लेके आएगा कोई भी आदमी, लेकिन दिल का ऑपरेशन कराना होगा तो हर एक किसी एक साधारण डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। जाने से पहले 10 आदमी से पूछेगा किससे ऑपरेशन कराऊं, किसका नाम अच्छा है, किसकी रिजल्ट अच्छी है। तो ऐसे भगवान को पाने के लिए हृदय की ऑपरेशन करनी है, दिल की ऑपरेशन करनी है। अंदर कचरा दिल में है, ये नलियां जैसे दिल की ब्लॉक होती है ना, ये अंदर में वो दिल की सफाई करानी है, हृदय की सफाई करानी है। तो डॉक्टर कथा करने वाला कौन सा होना चाहिए जिसकी कथा भगवान की? बोला सुखदेव गोस्वामी के लिए परीक्षित महाराज ये श्लोक बोलता है 10 स्कंद में। भगवान कृष्ण की कथा शुरू करने से पहले कह, महाराज कृष्ण की कथा आप जैसा कोई संत सुखदेव जैसा निवृत्त तृषई करेगा ना तो भव रोग से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभुपाद जैसा महात्मा अमेरिका जैसे पाश्चात्य देश में पापों से घिरे हुए लोगों के बीच में कथा और कीर्तन करता है तो उसके जीवन बदल जाता है, क्योंकि उसको कुछ दुनिया से चाहिए नहीं था। प्रभुपाद को लोगों ने कहा जब वो अमेरिका में गए, कहा महाराज आपको पैंट पहनना चाहिए, टाई बांधना चाहिए, इस देश में आए हैं तो इन जैसा वेश पहनना चाहिए, कांटे से चमचे से खाना चाहिए। प्रभुपाद ने पूछा, बत उत्तर दिया कि हमारे सब भारत से आए हुए लोग सब पैंट पहनते हैं, यहाँ टाई बांधते हैं, कोट पहनते हैं, कांटे चमचे से खाते हैं, क्यों? बोला इसलिए कि वो यहाँ कुछ लेने आए हैं। या तो पढ़ने आए हैं, कुछ विद्यालय ने आए हैं, अथवा धन कमाने के लिए आए हैं। अपना घर परिवार छोड़कर अमेरिका तक अगर आया है कोई भारत से, तो दो ही उद्देश्य लाया है, पैसा कमाना है या कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है। तो उसको क्योंकि यहां से लेना है, इसलिए ऐसा बनना पड़ेगा जैसे आप हो। लेकिन फिर कहा, मैं लेने नहीं आया हूं कुछ भी, मैं देने आया हूं। मैं लेने नहीं आया हूं, मैं देने आया हूं, इसलिए जो मुझसे लेगा उसको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मैं देने आया हूं, इसलिए मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन जो मुझसे लेना चाहेगा उसको बदलना पड़ेगा। और उन्होंने लाखों की संख्या में लोगों का जीवन बदल दिया। और वो विदेशी लोग अमेरिका और यूरोप के धोती पहन के, चोटी पहन के और स्त्रियां साड़ी पहन के, तिलक लगा के भ्रमण करने लगी पाश्चात्य देशों में। और जब भारत में आई तो भारतवासियों की आंख खुल गई, अरे राम राम, ये तो हमारे घर में दादा हमारा किया करता था, हमने तो पोथी बंद करके रख दी, ये तो बाहर के लोग अमेरिका वाले इसको अपना रहे, होता है अच्छा है तब अपनाया है, अरे हमने गलती कर दी, चलो खोल लो दुकान, अपने पिताजी का पुरानी पेटी परियोगी गीता निकालो पढ़ते हैं इसमें क्या है, इस लोगों का इतना भला हो गया, हमने अपने घर में इस चीज को होते हुए क्यों नहीं। ऐसे भारत में बहुत बड़ी जागृति आ गई उन लोगों को देखकर। लेकिन ऐसा कथा करने वाला महात्मा होता है ना, तो जीवन में परिवर्तन आता है, भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, कृष्ण भक्ति और प्रेम प्राप्त होता है। नहीं तो वही शास्त्र है, लाख लोग कथा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जीवन की शैली तो नहीं बदल रही। इसको साधारण रूप से ऐसे समझ लें, उतनी दाल, उतना घी, उतनी मिर्च, उतनी नमक, उतना जीरा, वो सब आप 10 माताएं 10 को देते हैं, 10 जाके दाल बनाओ, 10 की दाल का स्वाद अलग होगा कि नहीं होगा, हर एक अलग होता है कि नहीं होता है, दो एक जैसा नहीं हो सकता है, देखा है, हर वही चीज है लेकिन स्वाद सबका अलग होगा। ऐसे पुस्तक वही है लेकिन जब शुद्ध भक्त से मुख से सुना जाता है तो जीवन में परिवर्तन आता है। नहीं तो सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, दूध तो बहुत पौष्टिक पदार्थ है, पीने से शक्ति मिलती है, लेकिन कहीं सर्प उसको छू ले और अपना विष उसमें डाल दे तो वो घातक हो जाता है। इसे भगवान की कथाएं, भगवत गीता, भागवत तो अपने आप में बहुत बड़ी शक्तिशाली है, पवित्र करने वाली है, लेकिन बोलने वाला अगर भक्त नहीं है तो जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। ये आप भारत में गली गली में रोज देख सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, कथाएं भी सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बताने वाले में पवित्रता नहीं है, शुद्धि नहीं है। जब तक बताने वाले में शुद्धि पवित्रता नहीं है, तब तक सुनने वाले के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो कथा कीर्तन के द्वारा हृदय तो पवित्र होता है, लेकिन ये प्रश्न है सुननी कहां बैठकर चाहिए, किससे सुननी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन में। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना में एक विशेष बात यह है, कथा करने वाला कोई भी हो, लेकिन केवल प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा साधु संतों के जीवन में अनुभव से के द्वारा जो वचन है वही केवल वो दोहराता है, उसी की आवृत्ति करता है, अपने मन घर से घर के कुछ भी उसमें नहीं डालता है। इसलिए प्रभुपाद जी से कभी किसी ने पूछा था कि क्या आप शुद्ध हैं क्या, तो उन्होंने कहा, देखिए मैं शुद्ध हूं इस बात की मैं घोषणा नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये शुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर उदाहरण दिया कि पोस्टमैन कोई बड़ा आदमी नहीं होता है, डाकिया, लेकिन आपके घर में चिट्ठी लाए कि आपका बेटा पहले नंबर पे आ गया है, तो आपके घर में तो खुशियां लाएगा ना। तो डाकिया बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन समाचार तो अच्छा लाया ना। और डाकिया कोई चिट्ठी लाए जिसमें आपके किसी सगे संबंधी के एक्सीडेंट का समाचार हो तो आपको दुख होगा, लेकिन उसका डाकिया जिम्मेवार नहीं है। डाकिया ने आप तो चिट्ठी ला के दे दी है ना पोस्टमैन ने। प्रभुपाद कहते ऐसे हम पोस्टमैन है, भगवान कृष्ण के शब्दों को यथारूप में आपके सामने रखते हैं। आपका हित भी हो सकता है इसमें, और नहीं मानेंगे तो अहित भी होता, हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं। तो अपने आप को बहुत निम्रता से उस महात्मा ने ऐसे कहा कि हम केवल भगवान का संदेश वाहक है, हमारा अपना इसमें कुछ भी मन से नहीं जोड़ रहे हैं। तो बोलने वाले की क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो केवल शास्त्रों को यथारूप में अपने मन कपोल से दिमाग से कुछ जोड़ तोड़ के नहीं बोले। जोड़ तोड़ के बोलेगा तो लोग भी जोड़ तोड़ करके वहां से चले जाएंगे, शुद्ध बोलेगा तो आपके हृदय में भी भगवान की कृपा से पवित्रता आएगी। तो ये रविवार के सत्संग का उद्देश्य, आप आइए श्रद्धा से हरि कथा और कीर्तन सुनिए और नेम बना लीजिए घर में भगवान के नाम जपने का। ये भगवान का नाम जपना रोज ऐसे है जैसे घर में रोज झाड़ू लगाना, जैसे घर में झाड़ू लगाना जितना जरूरी है माँ आपके घर में, उतना ही भगवान के नाम की माला जपना रोज जरूरी है। इस जैसे झाड़ू लगाने में नागा नहीं करते हैं, त्रुटि नहीं करते हैं, दो तीन बार भी लगा लेते हैं, ऐसे ये नित्य नेम से भगवान के जप का नेम बना लो। ये हाथ जोड़ के हम आपसे विनती करते हैं, केवल एक ही ये शक्ति है जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके अच्छे अच्छे से अच्छा भविष्य इस केवल एक काम करने से अपने आप उज्जवल हो जाएगा। केवल एक काम कीजिए, कुछ नहीं छोड़ने को कह रहे हैं, केवल भगवान के नाम को अपने जीवन में जोड़िए। केवल ये एक चीज आपके जीवन में जुड़ेगी, आपके जीवन में हर अच्छी चीज अपने आप आने लग जाएगी। कुछ अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं, कुछ अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। विश्व के अंदर हमने बहुत बड़ा प्रयोग करके देखा है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, लाखों लोगों के ऊपर हमने ये अभ्यास करके देखा है। केवल श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान के नाम को जपने का संकल्प ले ले तो उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उसका सारा रास्ता अपने आप साफ हो जाता है और उसके जीवन में अपने आप चमत्कार होने लग जाते हैं। चमत्कार का मतलब है अंदर से प्रकाश, अंदर प्रकाश अपने आप होने लग जाता है। तो ये एक कृपा करके आप अनुपम भेंट है प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा, नारद जी के दी हुई, सुखदेव महाराज की ये परंपरा की एक भेंट है जो हम आपको देना चाहते हैं, और आप इसको लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए। 16 अक्षर का मंत्र है, खुला बोलते हैं, छुप के बोलने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो बोलिए, नहीं तो सर्दी के दिन है, सवेले प्रसाद लो और अपने घर जाओ। कल सुबह आप अगर आ सकते हैं तो 8 से 9 बजे तक मंदिर में भागवत के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी प्रेमी निकट में रहते हैं, नजदीक में, तो 8 से 9 बजे तक आ सकते हैं। पहले स्कंद भागवत के ऊपर जो भी अध्याय होगा थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ, 50 मिनट हो गया, बहुत है।